ఓమజ్ఞానతిమిరంధశ్రవ్యానాంజనాశలాకయ చక్షురుణ్మిలితం ఏనా తస్మై శ్రీగురవే నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆజ తిరుభావైన శ్రీల జయదేవ గోస్వామి का तिरोभाव है. तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही भक्तों के लिए आनंद प्रदान करते हैं. तिरोभाव का मतलब है डिसअपीयरेंस और आविर्भाव है अपीयरेंस. तो क्योंकि जो भक्त है इस जगत में भी होता है तभी भी मुक्त होता है, और मुक्त होने के बाद वो जब आध्यात्मिक जगत में भी जाता है तो नियमित रूप से नित्य रूप से भगवत सेवा में वो नियुक्त हो जाता है. इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कौन व्यक्ति मुक्त है इस जगत में, जो व्यक्ति मन शरीर और वाणी से भगवत सेवा में नियुक्त लगा हुआ है वो मुक्त है. तो जयदेव गोस्वामी भगवान के एक विशेष भक्त थे. और हमारे चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जो चीजें चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की आने के बाद, जो भाव उन्माद दिव्य प्रेम रस, जिसको माधुर्य रस की जो परम सीमा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से प्रकट किया, ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भावों के लक्षण अपने दिव्य देह से प्रकट कराए जगन्नाथपुरी में, वो वेदों के लिए भी अज्ञात थे. मतलब वो लोग सोचते थे कि ये क्या चीज है, क्योंकि कभी कभी देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर के गेट में सारे गायों के बीच में पड़े हुए हैं अकेले पूरे रात भर, और उनके जॉइंट सारे अलग हो गए, हाथ पांव सब कुछ अलग हो रहा था, यहां से सब ऐसा पूरा लंबा एक बैग हो गया था. तो उनको उठा के ले जाते थे फिर सुबह भक्त लोग ढूंढ के, और रोज ऐसे होता था. तो ऐसे जो भावों के लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए, इनका वर्णन जयदेव गोस्वामी ने पहले ही कर दिया था. तो जयदेव गोस्वामी के जो, जैसे हमारे लिए श्रील प्रभुपाद के बुक बहुत महत्वपूर्ण है अध्ययन करना. क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रभुपाद उस माँ के समान है जिन्होंने, जो क्या करती है अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको सीधा राइस दाल सब्जी चपाती आदि खिलाएंगे तो उनके लिए इनडाइजेशन हो जाएगा, दिक्कत होगी. लेकिन माँ क्या करती है, वो खुद खाती है, और किस फॉर्म में देती है, मिल्क के फॉर्म में, और मिल्क में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है. तो वैसे ही प्रभुपाद के पर्पट्स उस मिल्क के समान है जो हमारे लिए हेल्दी है आध्यात्मिक जीवन के लिए. तो चैतन्य महाप्रभु के लिए तो जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ थे. तो जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ कौन से है? चैतन्य महाप्रभु को जयदेव गोस्वामी के ग्रंथ गीत गोविंद आदि, मेन जो उनका ग्रंथ है गीत गोविंद है. तो ये गीत गोविंद, ये जो उनका लिटरेरी जो लिटरेचर जो प्रदान किया जयदेव गोस्वामी ने, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं था, सामान्य भक्त के लिए नहीं है. ये कौन से कैलिबर के भक्तों के लिए ये ग्रंथ है? जो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जो कैलिबर के भक्त हैं उनके लिए केवल जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है. जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सोचा कि गीत गोविंद को पब्लिश करता हूं, तो उन्होंने अपने पिता श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा. तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा बहुत अच्छा तुम्हारा वो है, विचार है, लेकिन दो ही बुक छापना, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। इसलिए है जो ये गीत गोविंद नामक ग्रंथ है, हाँ वो दिव्य राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं जो भौतिक धरातल से परे हैं, उनका वर्णन करता है गीत गोविंद। तो ऐसे ग्रंथों को यदि नव दीक्षित भक्त पढ़ता है तो वो जरूर कंफ्यूज्ड हो जाएगा और उसके हृदय में काम विकार बहुत तीव्रता से उत्पन्न होगा, ये निश्चित है। क्योंकि और उससे क्या होगा कि जो भक्त है वो ढोंगी भक्त बनेंगे और समाज में उत्पात होगा और भौतिक आकर्षण के प्रति झुका होगा। तो इसलिए ये जो गीत गोविंद आदि ग्रंथ हैं जो जयदेव गोस्वामी के हैं, इनको आचार्यगण भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने दो ही किताबें बस छापो। तो जयदेव गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है जो बहुत उन्नत शिक्षा है, चैतन्य चरितामृत में आता है, जय जय श्लोक जय देव भागवते राय नाटक जय आर कर्णामृते सही सही भावे श्लोक करिया पठने सही सही भावने भावने से करे ना स्वादने। तो कहते महा अंत्य लीला में कि इन ग्रंथों के तात्पर्यों को रिलीज करते थे चैतन्य महाप्रभु। कौन से? जयदेव गोस्वामी का ग्रंथ भागवतम और रामानंद राय का एक नाटक था जगन्नाथ वल्लभ नाटक नामक का ग्रंथ और कृष्ण करणामृत बिल मंगल ठाकुर का। तो इन ग्रंथों को चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे, आस्वादन करते थे और चैतन्य चरितामृत में कई जगहों में आया है, करणामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद तार श्लोक गीते प्रभुर करे आनंद। महाप्रभु को आनंद प्रदान करते थे इसके श्लोक। विद्यापति जय देव चंडी दासे रगित अस्वादे रामानंद स्वरूप सहित। तो ये महाप्रभु केवल महाप्रभु ने ये दिया है कि खुद आस्वादन करते थे, लिमिटेड भक्तों के संग में डिस्कशन करते थे, दो ही उनके प्रमुख भक्त थे जिनके संग में चैतन्य महाप्रभु इन दिव्य ग्रंथों का आस्वादन करते थे, चर्चा करते थे, श्रवण करते थे और सर्व सामान्यों के बीच में हरिनाम संकीर्तन वो करते थे। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं जिनका वर्णन कई ग्रंथों में आता है, उनके एक शिष्य भी हुए हैं, उन्होंने एक उनके ऊपर जयदेव चरित्र नामक एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें जयदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे मैंने कहा प्रकट होने से पहले ही ये ग्रंथ प्रकट हुए थे और ऐसे जयदेव गोस्वामी का जन्म केंदु बिल्व ग्राम में हुआ था, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में आता है। और ऐसे जयदेव गोस्वामी के बारे में कहा जाता है कि वो नवद्वीप में निवास करते थे अपने शुरुआत के दिनों में। उनके पिता और माता का नाम यहाँ मेंशन किया है, भोजदेव और मदर थी बामा देवी। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी छोटे बालक ही थे तो बचपन से उनका आकर्षण जगन्नाथ के प्रति बहुत अधिक था, जगन्नाथ विग्रहों के प्रति। तो जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं बहुत विरक्ति अनुभव करते हैं और जगन्नाथ पुरी चले जाते हैं। उनके लिए उनको वो फॉन्ड थे इसके, ओडिशा और जगन्नाथ के फैन भी हो गए थे। तो उनको जगन्नाथ का दर्शन करना, उनके बारे में चर्चा करना आदि बहुत अधिक प्रिय था। तो जयदेव गोस्वामी वहां जाते हैं तो एक ब्राह्मण थे जगन्नाथपुरी में जिनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि आप मुझे ये दे दो, क्या कहेंगे बच्चे, पुत्र आदि दे दो और जो भी चिल्ड्रंस जन्म लेंगे उनको मैं आपको ऑफर करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से उस ब्राह्मण को एक पुत्री हुई जिनका नाम उन्होंने पद्मावती रखा। तो पद्मावती बहुत बुद्धिमान सुंदर आदि थे। तो जब एक दिन, क्योंकि अभी विवाह के योग्य हो गई थी, तो उसका विवाह पिता का सबसे पहला चिंता ये होता है, पुत्र और पुत्रियों का विवाह। तो वो सोच रहे थे कि इसका विवाह कैसे करूं। तो फिर ये तो जयदेव गोस्वामी वहां अपना ड्यूटी लेके भजन किया करते थे। एक दिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर वट वृक्ष के नीचे जयदेव गोस्वामी, हाँ, क्योंकि उनके विग्रह राधा माधव थे जो उनके अपने ड्यूटीज थे, और बहुत प्रेम था राधा माधव के प्रति। तो जयदेव गोस्वामी उस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो ये ब्राह्मण, क्योंकि भगवान ने कहा मेरा एक भक्त आया है, ब्रह्मचारी भक्त है, अभी विवाह नहीं हुआ है, उसको जाके आप ये दे दो। किसको दे दो? ये जो पद्मावती का विवाह कर दो। तो ब्राह्मण सुबह उठते अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सीधा ले जाते, इजी हो गया उनको। तो देखा कि जयदेव गोस्वामी वृक्ष के नीचे बैठे हरि नाम जप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान की आज्ञा से मैं आया हूं और आप मेरी पुत्री पद्मावती के साथ विवाह करें। तो इनका बिल्कुल इरादा नहीं था, हाँ, ये विवाह करने के लिए, इस टेंशन को परचेज करने में कोई उनका इरादा नहीं था। जैसे कल ही हुआ ना, रामचंद्र कविराज जब अपना मैरिज के साथ जा रहे थे, दूल्हा दुल्हन, तो श्रीनिवास आचार्य भागवतम क्लास दे रहे थे, तो उनके पीछे से वो बारात जा रहे थे। श्रीनिवास आचार्य मेंशन करते, सी ये देखो, ये पूरा जीवन लगा के धन अर्जन करके, इतना पैसा खर्च करके टेंशन खरीदने गया था, और अभी वो घर जा रहा है लेके। ये शब्द श्रीनिवास आचार्य के कानों में गए, रामचंद्र कविराज के, और वो गए घर, और कई चीजें बोली थी श्रीनिवास आचार्य ने जाजी ग्राम में। तो जब गए तो उनको नहीं, पहला ही रात था अपनी पत्नी के साथ, तो पूरे रात केवल श्रीमद भागवतम क्लास में क्या सुना ऑन द वे वही डिस्कस कर रहे थे। और रामचंद्र कविराज बहुत विद्वान थे, सारे ग्रंथों में बहुत वेल वर्स थे। तो ऐसे ही इनका भी कोई इरादा नहीं था, हाँ, जयदेव गोस्वामी का, हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण जैसे आता है और बोलते मैं, वो मना करते हैं, वो उसको वहीं छोड़ जाते, कहते ये आपके पति है और ये तुम्हारी पत्नी है, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। तभी जयदेव गोस्वामी तो बहुत ये थे, परेशान थे कि अभी कैसे करें, हाँ, सर के ऊपर ये और एक नया बोझ आ गया। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, अभी उनको शर्म भी आ रहे थे उस श्री से बात करने के लिए, कैसे बात करो उससे, हाँ, उनका संबंध नहीं था किसी श्रीयों से। तो ऐसे है जयदेव गोस्वामी पद्मावती की ओर देखते हैं और बहुत शर्म के मारे वो कहते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, हाँ, मेरे साथ आओ, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। तो कहती है, हाँ, और क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ नहीं रह सकती। तो वो बड़ी विनीत भाव से वो पद्मावती उनको कहती है कि जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था मेरे पिता को, और मेरे पिता आपको ऑफर करके गए हैं मुझे, तो बस मैं एक ही चाहती हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं और आपके चरणों की सेवा छोड़ के मैं नहीं जाता। तो जयदेव गोस्वामी सोचते हैं कि ये भगवान का एक विशेष योजना मेरे लिए है, क्योंकि भगवान कई बार अपने भक्तों को प्यूरिफाई करने के लिए देते हैं ये चीजें। और एक तो ये चीज है कि आदर्श प्रस्तुत करते हैं सारे समाज को कि मेरा भक्त गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी कितना शत प्रतिशत शरणागत होता है, जिसे भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। और वो असली एक्चुअली इसलिए गृहस्थ लाइफ में वो बहुत ग्लोरियस लाइफ है, गृहस्थ लाइफ, हाँ, क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थ लाइफ ही कर रहा है। ब्रह्मचारियों को जन्म कौन दे रहा है? गृहस्था दे रहे हैं, है कि नहीं? सन्यासियों का पालन करते हैं, वानप्रस्थ का पालन करते हैं, ब्रह्मचारियों का पालन करते हैं, कौन? गृहस्थ। तो उनका अपना एक स्थान है, इतने सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी हाँ वो कृष्ण को कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वो महान है कृष्ण की आंखों में। इसलिए जो 12 महाजनों में कितने महाजन ब्रह्मचारी है, दो ही शायद, हाँ दो या तीन, बाकी सारे ज्यादातर हाउस होल्डर्स है। तो प्रभुपाद ने एक बड़ा क्लास दिया था, इस पे कमेंट किया था प्रभुपाद ने, महाजन। हाँ, तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी का विवाह उनके साथ होता है और जयदेव गोस्वामी उनके साथ निवास करते हैं पद्मावती के साथ, और पद्मावती और जयदेव गोस्वामी का जो प्रेम है दिन ब दिन जगन्नाथ के प्रति बहुत गहरा होते जा रहा था, और जगन्नाथ जी भी जयदेव गोस्वामी को देखने के लिए आतुर हुआ करते थे। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी जब ये गीत गोविंद को लिख रहे थे, जो अपने बड़ी विदित वो पास टाइम है, वो कथा है कि किस प्रकार से जयदेव गोस्वामी राइटिंग कर रहे थे, तो वो दिन में जब स्नान के लिए गए गंगा में, तो राइटिंग से बीच में वो अटक गए, क्योंकि एक चीज वो लिखने जा रहे थे। तो वो चीज क्या थी, क्योंकि ये जो महान भक्त हैं जो इन दिव्य भगवत लीला को देखते हैं और लिखते हैं, देखते हैं और लिखते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भगवान अतेशा मेवानु कंपार्त अहम अज्ञान जमतम नाश्यामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये जो तो जैसे गोस्वामी आदि हैं जिन्होंने कृष्ण लीला के इस सिद्धांत को लिखा है, दिव्य लीलाओं को जैसे कि रिकॉर्ड किया है, ऐसे लिखा है। तो जयदेव गोस्वामी भी ये वैष्णव, क्योंकि कृष्ण प्रेम से इतने पूरित होते हैं कि वो हर समय कृष्ण को देखते हैं, उनके दिव्य लीलाओं को, और उनको लिखते हैं। तो ऐसे जब लिख रहे थे तो एक चीज उनको स्फुरित हुआ है कि श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और ऐसे कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके चरण को अपने सर में रखना चाह रहे हैं। उफ, ये विचार आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत चीज है, ये नहीं लिख सकता मैं। कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड का हेड है ऐसे कृष्ण वो क्या है, वो अपने हेड पर किसी और चीज को रख रहे हैं। क्या चीज रख रहे हैं, चरण, श्रीमती राधा रानी के चरण। जो हेड होने के बावजूद भी वो अपना हेड झुका रहे हैं, किसके नीचे, राधा रानी जो उनके दिव्य भक्त हैं। तो ये जयदेव गोस्वामी ने कहा ये क्या विचार आए, तो जयदेव गोस्वामी कहते नहीं अभी मुझे स्नान करके आना चाहिए, हम कभी कहते थे नहीं अभी ठीक नहीं, थोड़ा स्नान करता फ्रेश होता फिर पढ़ता। हाँ तो गए, तो ये विचार उनके हृदय में थे, तो भगवान उसको प्रकट करना चाहते थे श्रीमती राधा रानी की महानता को, और ये दिखाना चाहते थे कि मेरे जो डिवोटीज हैं वो मुझसे क्या है, बहुत अधिक महान है, भक्तों का जो स्थान है वो भगवान से भी बड़ा है। इसलिए भगवान कहते मद भक्त अभी पूजा भ्याधिका, भागवत में कहते कि मेरे पूजा से अधिक श्रेष्ठ पूजा मेरे भक्त की है। तो जब वो गंगा नदी में गए तो ये जो जयदेव गोस्वामी थे, तो जयदेव गोस्वामी का ही रूप लेके कृष्ण आते हैं और पद्मावती को कहते कि हाँ ठीक, पद्मावती कि आप तुरंत कैसे आ गए, अभी अभी तो गए नहीं, मुझे विचार कुछ विचार आ गए मेरे दिमाग में, कुछ चीजें स्फुरित हो गई, अभी मैं लिखना चाहता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो तुरंत जाते हैं अंदर और लिखते हैं, देही पद पल्लव उदारम, आपके चरण कमल मेरे सर में दे दो। तो और भगवान कहते कि हाँ मुझे अभी भूख भी लगी है, आप मुझे कुछ भोजन भी खिलाओ। तो पद्मावती उनको सर्व करती हैं जो कृष्ण हैं, चले जाते, वो बाहर निकलते कि नहीं तो ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी आते, वो कहते क्या हो गया, अभी अभी तो आप गए, अब दूसरी बार कैसे आ रहे, इतना संभव नहीं है कि इतना तुरंत कोई व्यक्ति स्नान करके वापस आ सकता है। तो फिर कहते सही में कौन, मैं वो कहते मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन व्यक्ति था जो पहले आया था, या आप दूसरे कोई व्यक्ति हो। तो ये कहते कि नहीं नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखा है उसने। तो जाते तो देखते हैं कि हैंडराइटिंग, किसकी हैंडराइटिंग थी, कृष्ण की, हाँ कितनी सुंदर होगी, हाँ उनके हर चीज सुंदर है। इसलिए वल्लभाचार्य ने एक अष्टकम लिख दिया, मधुरम मधुरम, हाँ सब चीज मधुर से उनको स्वीट है हर चीज, उनका चलना, उनका बोलना, उनका एक्ट करना। तो ऐसे जो मधुर कृष्ण है उनका हैंडराइटिंग देखते तो ये दोनों विवल हो जाते हैं और जयदेव गोस्वामी कहते कि हाँ तुम तो बहुत श्रेष्ठ है कि तुम्हारे हाथ से साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण जगन्नाथ जी ने अपने आपसे क्या किया, हम भोजन स्वीकार किया है। तो कहते आप बहुत महान हो। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी का हृदय कृष्ण जानते हैं या कृष्ण का हृदय जयदेव गोस्वामी जानते हैं, क्योंकि भक्ति जान सकता है भक्तों भगवान के हृदय को। इसलिए भगवान भगवत गीता का उपदेश अपने भक्तों को प्रदान करते हैं ताकि भगवत गीता ज्ञान लॉक्ड है तो अनलॉक कौन कर सकता है, केवल डिवोटीज। तो ऐसे जो कृष्ण है जो जयदेव गोस्वामी से बहुत अधिक प्रेम का आदान प्रदान करते थे, तो ऐसा जो गीत गोविंद ग्रंथ है वो इतना फेमस हो गया वैष्णव कम्युनिटी में कि वो ओडिशा का बाथरूम सॉन्ग बन गया। जहां तहा ओडिशा में ये जो प्रलयोपयोधि जले, ये जो दशावतार स्तोत्र आदि कई गीत है, श्रुत कमला कुच मंडल है, ये सब गीत वहां के बच्चे बच्चे गाते। और मैं 10 साल से याद करने का प्रयास कर रहा हूँ फिर भी याद नहीं हो रहा है मुझे। वहां जगन्नाथ मंदिर जाओगे सुबह सुबह खुलता है, सारे ओल्ड लोग, गांव के लोग, बच्चे लोग सब जगन्नाथ को देख के वे गाते जगन्नाथ अष्टकम प्रलयोपयोधि जले श्रित कमला कुच मंडल है, ये मंगल गीतम। तो ऐसा ये जो जयदेव गोस्वामी का गीत इतना फेमस हो गया, ये बाथरूम सॉन्ग बन गया हर एक के मुख में और इतना प्रिय हो गया केवल उस कम्युनिटी को ही नहीं तो जो जगन्नाथ जी को भी बहुत अधिक प्रिय हो गया। कैसे प्रिय हुआ कि जगन्नाथ जी स्वयं इस गीत को सुनने के लिए लालायित रहा करते थे। तो एक दिन जगन्नाथपुरी के टेंपल से दूर स्थान में एक जो युवती है, एक छोटी सी लड़की इस गीत का गान कर रही थी, तो जगन्नाथ जी ने दूर से ही सुना तो जगन्नाथ, और वो गा रही है और कहां थी, अपने गार्डन में थी, बैंगन का गार्डन था, बैंगन अपने खेती से वो तोड़ते जा रहे थे और साथ साथ क्या गा रहे थे, ये गीत गोविंद का गान कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी इतने आतुर हो गए क्योंकि अपनी लीला कौन नहीं सुनना चाहेगा, अपने बारे में कौन नहीं सुनना चाहेगा, हर कोई चाहेगा। तो ये चीज किसमें है, परम भगवान के अंदर है क्योंकि वो सबके उगम है। तो वही कृष्णा ये इस गीत गोविंद को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रात को जब टेंपल क्लोज हुआ, जगन्नाथ जी अपना स्थान छोड़ के अपने भाई और बहन को छोड़ के भागते हैं, इतना आकर्षण उनको श्रवण में, और हमें बहुत कठिन है हमारा आकर्षण। ये जगन्नाथ बने ही श्रवण से है एक्चुअली, ये जगन्नाथ फॉर्म कैसे बना, श्रवण से। उन्होंने सुना, किन से सुना, रोहिणी से। तो ये श्रवण का महात्म्य बताने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं, एक एस्पेक्ट है जगन्नाथ फॉर्म का। ये कृष्ण लीला कृष्ण कथा इतने दिव्य है, मधुर है, आस्वादनीय है, जिसको साक्षात कृष्ण सुनना चाहते हैं, एक बार नहीं बार बार सुनो, हजार बार सुनो, हजार बार सुनो, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में, हाँ माया के बारे में नहीं। तो ऐसे जगन्नाथ साक्षात श्रवण के वो ये है, श्रवण करने के वो अधिकारी है, या श्रवण करके सिखाते। आपने आचार्य प्रभु जगते सिखाए, जगन्नाथ जी ने अपने आचरण से सिखाया कि कैसे श्रवण करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी भागते हैं अपना टेंपल छोड़ के और उस गार्डन में पहुंचते हैं, और वो जो लड़की है छोटी सी वो बैंगन निकालते जा रही है और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे श्रवण करते जा रहे हैं। तो जैसे से वो गई, फिर जब समय हो गया तो जगन्नाथ जी तुरंत निकल जाते हैं वापस। तो जब सुबह पुजारी गए, देखा कि भगवान का वो सारे कपड़े फटे हुए हैं और ऊपर का जो शॉल चद्दर है वो नहीं है जगन्नाथ जी का। सब पंडे वगैरह डर गए क्या हुआ। तो बाद में उनको जगन्नाथ जी स्वप्नादेश देते हैं राजा को, और पता चलता है कि जगन्नाथ जी कहाँ गए थे, श्रवण करने के लिए गए थे खेतों में, वहां उनका चद्दर पड़ा हुआ था और सारे बैंगन के कांटों से उनके कपड़े फट गए थे। तो भगवान ने कहा कि उस युवती को, उनके फैमिली को यहाँ स्थान दो। राजा उनको स्थान देते हैं और रोज सोने से पहले जगन्नाथ जी क्या सुनते हैं, गीत गोविंद को सुनते हैं। प्रभुपाद ने कहा सोने से पहले क्या पढ़ो, कृष्णा बुक पढ़ो। भगवान भी कृष्णा बुक पढ़ के सोते हैं क्योंकि गीत गोविंद में क्या है, राधा कृष्ण और उनके भक्तों के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है। तो ऐसा गीत गोविंद जगन्नाथ को इतना प्रिय था कि उसको लपेटे बिना उनको नींद नहीं आती। तो वहां के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव गजपति, उनको ईर्ष्या हो गई। किन से ईर्ष्या हो गई, जयदेव गोस्वामी से, उनके इस ग्रंथ से। अरे इतना फेम इसको क्यों, ये सामान्य व्यक्ति है, मैं राजा हूं, मेरा फेम, मेरा प्रसिद्धि होना चाहिए, मेरा यश फैलना चाहिए, ये बे यश घुसुक त्रिभुवन, वन में भी जाना चाहिए मेरा यश, सब जगह वृंदावन में भी लोग मुझे जाने, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, कथाएं करें। हाँ तो जब राजा ने ऐसे सोचा तो उन्होंने एक गीत गोविंद लिखा। हाँ जैसे भगवद गीता यथारूप है तो भगवद गीता अपना रूप, तो वैसे ही उन्होंने गीत गोविंद लिखा। उसका नाम उन्होंने रखा अभिनव गीत गोविंद। क्या, अभिनव गीत गोविंद। तो और क्योंकि राजा है तो बलपूर्वक सारे पंडित आदि को सबको कहता था कि नहीं मेरे गीत गोविंद का प्रचार करो। हाँ तो जो वाल्मीकि ने लिखे हुए रामायण नहीं, आशा रामायण, मेरे रामायण का प्रचार करो। वैसे ही यहाँ क्या है, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद नहीं, अभिनव गीत गोविंद, मेरा गीत गोविंद। तो सारे भक्त लोग परेशान हो गए थे, राजा है, अधिकारी है, अथॉरिटी है, उसकी बात माननी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ तो ना भी नहीं कर सकते, तो लेकिन सब परेशान हो गए। सबने कहा नहीं, इसका डिसीजन जगन्नाथ जी स्वयं ले। हाँ किसका गीत गोविंद उनको चाहिए, क्योंकि राजा चाहते कि मेरा गीत गोविंद भगवान को सुनाए, मेरा गीत गोविंद का मैराथन हो पूरे ओडिशा सब जगह। तो उन्होंने कहा नहीं, हम रात को क्या करेंगे, दोनों कॉपी जगन्नाथ जी के पास छोड़ेंगे और सुबह भगवान को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो सुबह दोनों कॉपी रखी भगवान के सामने, बुक जयदेव गोस्वामी का, पुरुषोत्तम देव का, अभिनव गीत गोविंद। तो भगवान जैसे ही सुबह सब पुजारी गए, डोर्स ओपन किए, देखा कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद को भगवान ने अपने छाती में लगा के रखा था और उनका गीत गोविंद को फाड़ तोड़ के पन्ने पन्ने इधर उधर बिखर गए थे। तो फिर राजा ठिकाने में आ जाता है। हाँ तो भगवान क्या करते हैं, हम वो सहन नहीं करते, एक चीज अपने भक्तों में अहंकार को नहीं सहन करते, कर्मी में ठीक है लेकिन वो भक्त में देखते हैं तो भगवान बहुत थंडर बोल्ट के समान काम करते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी देखते हैं कि वो ब्रह्मचारियों के हीरो हैं। कौन, हनुमान जी। वो देखते हैं ब्रह्मचारी भागवतम क्लास में नहीं जा रहा है, रात को उसको गदा से मारते हैं। वो बड़ा ध्यान रखते हैं उसका, क्योंकि वो स्वयं राम कथा श्रवण करते हैं। तो वैसे ही ये जो अभिनव गीत गोविंद का यह हालत हुआ और भगवान ने दिखाया कि ये गीत गोविंद मुझे कितना प्रिय है, इसलिए आज भी जगन्नाथ जी को जब सुलाते हैं तो रात को वस्त्र, एक वस्त्र है चदर जिनके ऊपर गीत गोविंद लिखा हुआ है और वो गीत गोविंद उनको लपेटा जाता है भगवान को पूरा, तब उनको नींद आती है, नहीं तो जगन्नाथ जी को नींद नहीं आती। वैसे वो 3 घंटे के लिए सोते हैं, हाँ और रात को सोते नहीं, वो अब जाएंगे तो 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, सुबह उठते 3 बजे, 4-5 बजे, रात को 3 बजे सोते कभी कभी। हाँ तो ऐसे हैं, तो वैसे ही नींद नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो कौन है, विरह का अनुभव कर रहे हैं। हाँ माथुर विरह जिसे कहते हैं, कृष्ण विरह में है। जो कृष्णा क्राइंग फॉर कृष्णा कौन है, चैतन्य महाप्रभु ना, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए रो रहे हैं। वो तो कृष्णा क्राइंग फॉर राधा रानी, वो जगन्नाथ देव है। तो ऐसे ही गीत गोविंद को लपेटते हैं और उनको फिर नींद आती है। तो जयदेव गोस्वामी एक दिन वो गीत गोविंद, क्योंकि एक विलेज में, आज भी वो विलेज है उड़ीसा में, जहां हाथ से वो कपड़े बनाते हैं ना, बुनकर हाँ बुनते हैं, तो वहां वो चाहते थे जगन्नाथ जी के लिए, तो ताकि वो बुनकर वो जो काम कर रहा था, तो इनको कहा कि आप रिसाइट करो और मैं वो ये करूंगा साथ साथ वो। तो ये रिसाइट करते थे जयदेव गोस्वामी, तो जयदेव गोस्वामी ट्रांस में चले जाते हैं, बिल्कुल शब्द हो जाते हैं जब गीत गोविंद की काफी चीजें रिसाइट करते। तो वो बुनकर अभी परेशान हो गया था, आधा एक घंटा हो गया, तो उसी समय एक फॉर्म लेके साक्षात जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं मैं इनका ही भाई हूँ, और उन्होंने सारा रिसाइट करते आगे के सारे श्लोक। जब आते वापस ट्रांस में तो कहते हाँ हो गया, तो जयदेव गोस्वामी कहते कैसे हो गया, मैं तो पूरा नहीं बोल पाया। कहते आपके बंधु आए थे, क्योंकि तब तो उस समय केवल इनको ही ज्ञात था। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ है या कृष्ण, इनको इतना प्रिय है कि जो शालिग्राम शिला है वो वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी में एक मोची था, मोची के पास एक शालिग्राम शिला थी, उसको पता नहीं ये शालिग्राम शिला है, वो पत्थर सोच के उसी के ऊपर अपना चप्पल रख के कील ठोकना रिपेयर करना वो सब करता था। और लेकिन एक खासियत क्या थी उसकी मोची की, वो कृष्ण नाम वो गीत गोविंद गाता रहता था काम करते हुए। इसको कहते सततम कीर्तयन्तो माम, का कार्य करते हुए भी कृष्ण का गान। तो एक ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण जाते रहे ये क्या है मोची, आप जो शालिग्राम शिला जिसके ऊपर चप्पल रखे साक्षात विष्णु है, विष्णु से अभिन्न है। तो कहता है ये तो भगवान आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, कितना पाप आपको लगेगा। तो वो उनको एक रुपया देकर वो शालिग्राम शिला ब्राह्मण ले जाते हैं, और ब्राह्मण ले जाते तो ब्राह्मण है उसका अभिषेक कर रहा है, तेल लगा रहा है, पता नहीं कितनी चीजें कर रहा है, मंत्रा उच्चारण कर रहा है, लेकिन जो कृष्ण है शालिग्राम शिला के फॉर्म में वो परेशान है। उनको कहते अरे बाबा तुम्हारा ये सब ठीक है, लेकिन मुझे वो श्रवण नहीं हो रहा है मेरा, क्या श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, ये श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा तो मेरा जो भक्ति लता बीज है वो भक्तों के प्रति नहीं बढ़ेगा। भगवान भी उनका प्रेम किसके प्रति बढ़ाते हैं, भक्तों के प्रति। तो फिर वो कहते कि आप मुझे वापस उनको दे दो, वो अच्छा है मेरे ऊपर चप्पल रख के काम कर रहा है, लेकिन मुझे क्या आनंद किस चीज से आ रहा है, गीत गोविंद को सुनता वो सुनता है। तो इस प्रकार से ये गीत गोविंद कृष्ण के लिए एक अभिन्न था, और इतना प्रेम प्रदर्शित करते हैं कृष्ण किनके प्रति, किनके प्रति प्रदर्शित करते हैं, जयदेव गोस्वामी के प्रति, इतना अफेक्शन कृष्ण का। सोच सकते हैं कितने ग्लोरियस हैं जयदेव गोस्वामी। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी वहां निवास करते थे नवदीप में। तो जब राजा लक्ष्मण सेन थे, उनको पता चला कि महान कवि आदि है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इसमें आप कवि बनो, या फिर क्या कहते हैं राज कवि वगैरह। तो उन्होंने मना किया, कहा कि मुझे, क्योंकि जो राजा है उसका स्वाभाविक आकर्षण स्त्री और धन से है, उसको डील करना पड़ता है, तो वो असत संग है। जो साधु है वो इनका संग करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विष भक्षण तो अपि साधु, विष भक्षण कर रहा है वो साधु जानबूझ के, इन चीजों का एसोसिएशन कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। लक्ष्मण सेन ने कहा, तो उन्होंने बहुत विनम्र थे लक्ष्मण सेन, जयदेव गोस्वामी को कहते आप मत चले जाइए, आप चाहे यहाँ नहीं तो नदी के उस पार रहिए। तो नदी के उस पार चंपा हट्टी, जब आप परिक्रमा करते नवदीप तो उधर चंपा हट्टी स्थान आता है, चंपक फ्लावर का हट मीन्स बाजार मार्केट था, और वो फूल चंपक फ्लावर गोल्डन कलर के हुआ करते थे, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही कृष्ण इनके प्रेम के कारण वही कृष्ण चंपा हट्टी में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनको फिर उस समय कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी भी आप जाइए चैतन्य महाप्रभु बहुत पहले प्रकट होकर ये चीज का वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं, कई स्थानों में फेस्टिवल आदि, क्योंकि उनके विग्रह थे राधा माधव, उनका उत्सव आदि कराने के लिए कलेक्ट करते थे लक्ष्मी। तो एक समय कुछ डेकॉइट्स ने उनको पकड़ा और उनके हाथ और पांव काट दिए और कुएं में उनको डाल दिया। तो एक जब राजा अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए जब भ्रमण किया करते थे तो उनको कृष्ण नाम सुनाई दे रहा था कुएं से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उनको सुनाई दिया तो देखा कि अरे कौन है, कहाँ है, तो देखा कि एक व्यक्ति जयदेव गोस्वामी को निकालते हैं अपने पालकी में, अपने साथ ले जाकर उनको अपने महल में रखते हैं और जयदेव गोस्वामी उस राजा से एक सेवा शुरू करवाते हैं। क्या सेवा शुरू करवाते हैं कि वैष्णव सेवा, डेली वैष्णव सेवा, जो भी वैष्णव आएंगे वहां उनके वहां सबका सेवा, तो उसका इंचार्ज जयदेव गोस्वामी बनते हैं, बल्कि उनके हाथ पांव नहीं थे। तब उस समय उस राज्य में वहां वही डेकॉइट्स आए जिन्होंने इनके हाथ पांव काट दिए थे। तो आए और उस तो देखा कि अरे ये तो हमारा पोल खोल देगा कि हमने इनको ये किया है, तो लेकिन जयदेव गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा, उनका प्रॉपर आदर सत्कार सम्मान किया। हाँ, तो वो सोच रहे थे यहाँ से भाग जाए हम, लेकिन वो उन्होंने अपने गार्ड को आदेश दिया कि इनका पूरा सेवा होगा तभी ये जा सकते, उनको भागने मत दो। फिर बाद में उनको धन आदि देकर गार्ड्स को कहते कि आप उनको छोड़ के आओ। तो ऐसे छोड़ने जाते हैं तो गार्ड्स को वो जयदेव गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि किसी राजा ने हमें नियुक्त किया था इनको मारने के लिए, जिनके कारण इनके हमने हाथ पांव तोड़ दिए थे। और फिर जब ऐसा कह रहे थे after traveling some distance the decoys took leave the royal guard saying we are employed by the certain raja to kill Jayadev. और क्योंकि जब उन्होंने निंदा की उन गार्ड्स के पास कि ये तो फ्रॉड साधु हैं जयदेव गोस्वामी, तो जैसे ये वाक्य कहे तो उसी समय कोई ऐसी शक्ति प्रवाहित हुई कि वो सारे डेकॉइट्स पूरे एक बड़ा गड्ढा होता है और उसमें चले जाते हैं, मर जाते हैं वैष्णव के प्रति इतना गहरा अपराध करने के कारण। तो फिर ये आकर गार्ड्स उनको बताते हैं और फिर भगवान की कृपा से जो तो जयदेव गोस्वामी का देखो अमानिना मान देना, वो डेकॉइट्स ने इतना उनके साथ बुरा किया था, ये बिल्कुल विदुर युधिष्ठिर महाराज के समान थे। धृतराष्ट्र ने क्या क्या नहीं किया लेकिन फिर भी युद्ध के बाद धृतराष्ट्र पांडवों के संग में रहा करते थे और पूरा आदर, रोज उठते युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को सबसे पहले प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो ये लक्षण भक्त का, वो टॉलरेट करता है हर समय सब जीवों को आदर देने की भावना उसके हृदय में हर क्षण हर समय हर स्थिति में होती है। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी फिर वृंदावन जाने का उनको वो आता है। जब उस राजा के पास रह रहे थे तो उन और जो राजा की रानी थी और पद्मावती का आपस में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हुआ। तो पद्मावती ने कहा कि स्त्री को इतना प्रेम होना चाहिए अपने पति से कि पति का देहांत होता है तो उसको भी तुरंत मरने के लिए तैयार होना चाहिए। इस रानी ने सोचा रही ये तो बोलती है, इसका टेस्ट करती हूँ। तो उन्होंने ऐसा अफवाह फैला दी उस रानी ने कि जयदेव गोस्वामी का मृत्यु हो गई है। तो जैसे ये सुना तो पद्मावती उसी क्षण शरीर त्यागती हैं। तो उस समय जयदेव गोस्वामी आते हैं उसके कान में कृष्ण नाम उच्चारण करके पुनः उसका लाइफ वापस ले आते हैं। फिर कृष्ण के आदेश से जयदेव गोस्वामी पद्मावती और अपने विग्रह राधा माधव के साथ वृंदावन आते हैं। केशी घाट में रहा करते थे, एक मंदिर उनके किसी डिसाइपल ने बनवाया और जब जयदेव गोस्वामी अप्रकट हुए तो जयपुर के राजा राधा माधव को ले जाते हैं जयपुर घाटी में, वहां आज भी जाएंगे तो जयपुर में उतरते बड़ा है ना पहाड़ी जैसा, उसको नव वृंदावन कहते हैं वहां जयपुर में, वो स्थान जो है राधा माधव का, तो वहां राधा माधव को इंस्टॉल करते हैं। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी का जो चरित्र है बहुत बड़ा और अतुलनीय है, और कई प्रकार से शिक्षाएं ले सकते हैं उनके लाइफ से, अलग अलग एस्पेक्ट्स, एक एक कथा में हजारों हजारों दिव्य शिक्षाएं हैं जो हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी जो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय थे, वही नहीं प्रिय थे तो उनकी हर चीज, उनका राइटिंग आदि, पद्मावती सब कुछ उनको प्रिय था। अब ये सफलता है, किसी भक्त के आश्रय में होते हैं तो भगवान को भक्त के संबंधी जो भी चीजें हैं उसके नौकर चाकर वो भी प्रिय होते हैं। श्रीवास पंडित के घर में एक पानी लाने वाली दासी थी, जब लॉर्ड चैतन्य आदि सब कीर्तन करते तो वो उसका वो सर्वेंट थे, मेड सर्वेंट, तो वो क्या करती थी, पानी लाती थी रोज, पानी लाने का काम, उसका नाम दुखी था। तो महाप्रभु ने देखा, अरे इतना वंडरफुल सेवा कर रहे हैं श्रीवास पंडित का, वैष्णव की सेवा में है, तो उसके कारण, केवल श्रीवास पंडित के कारण लॉर्ड चैतन्य उनको क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं। और ऐसे लॉर्ड चैतन्य जब जा रहे थे उनके घर से बाहर तो देखा कि ये मुस्लिम दर्जी था, टेलर, तो वो जो मुस्लिम दर्जी वो श्रीवास पंडित के कपड़े सिलाया करता था। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, महाप्रभु ने जस्ट देखा, देखने मात्र से उसके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हुई। तो ये लक्षण है कि शुद्ध उत्तम भक्त को देखने मात्र से भक्ति मिलती है, तो उनके श्रवण से, श्रवण करने से क्या होगा। तो जब हम तीनों अधिकारियों का वर्णन चैतन्य चरितामृत में करते हैं तो विशेष का वर्णन आता है। तो जयदेव गोस्वामी को हम प्रार्थना कर सकते हैं विशेष रूप से, और उनके गीतों को आज गाना चाहिए। श्री जयदेव गोस्वामी पाठ के, श्री चैतन्य देव के निताय गौर प्रेमानंदे,
जय
नाइट।